समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से ढुल कर घनघोर।
सुप्रभात। सूरज की पहली किरण एक नई कहानी की शुरुआत करता है, हर दिन कुछ नई सीख देता है। जिंदगी में दिल से प्रशंसा, दिमाग से हस्तक्षेप और विवेक से प्रतिक्रिया में ही समझदारी है, वरना मौन ही बेहतर होता है। इसीलिए ज्यादा बोलते समय अपने शब्दों पर जरूर ध्यान दें।
Good morning, Farhat, and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani Network. We bring you our forever exciting daily news magazine program, Aaj Savere, wherein over the next half an hour we'll bring you the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 26th of May. So let's begin with the headlines first, Farhat.
जी बिल्कुल, न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में एक बार फिर से आप सभी को फरहत नाज और अनिता आनंद का नमस्कार, जहां हम आपको देंगे देश और दुनिया की खबरें। तो आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में लगभग 61% मतदान दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में 79%, झारखंड में 64%, उड़ीसा में 69%, हरियाणा में लगभग 60% मतदान दर्ज किया गया है, दिल्ली में लगभग 58%, बिहार में 55% और उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में 54% मतदान दर्ज किया गया। ये जम्मू कश्मीर में पिछले 35 सालों में अब तक का रिकॉर्ड सर्वाधिक मतदान हुआ। उड़ीसा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में लगभग 70% मतदान की खबर है। कल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। तो अनिता, क्या आपने वोट डाला?
जी बिल्कुल, आपने भी डाला ही होगा।
जी बिल्कुल,
सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस।
जी बिल्कुल अनिता, और वैसे भी देखा जाए तो कल गर्मी काफी थी और उसके बावजूद उसमें मतदान करना, जी हाँ, लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया। और सबसे जो अच्छी पहल जो मुझे लगी वहां पर, वो थी निर्वाचन आयोग की इस बार दिव्यांगजनों और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए,
मतलब
जी हाँ, घर से मतदान की जो है वो व्यवस्था दी गई थी, तो काफी लोगों ने उससे भी मतदान किया, क्योंकि वहां पर पोलिंग बूथ में जाकर और काफी देर तक खड़े रहना, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वरिष्ठ नागरिकों को। तो ऐसे में ये जो पहल है वो काफी सराहनीय है और लोगों ने ज्यादातर जो है वो इसी तरीके से मतदान किया।
एंड इन बिहार कैंपेनिंग फॉर द 7th एंड फाइनल फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस हैज बीन इंटेंसिफाइड विद लीडर्स ऑफ एनडीए एंड ग्रैंड अलायंस एंड अदर पार्टीज होल्डिंग बैक टू बैक मल्टीपल रैलीज। Senior BJP leader and Union Home Minister Amit Shah will address 2 public meetings today in support of the NDA candidates. Mr. Shah will address election rallies in Karakat and Sasaram parliamentary constituencies. BJP President JP Nadda is also scheduled to address public meetings in Jahanabad, Ara and Nalanda Lok Sabha constituencies today. JDU President and Chief Minister Nitish Kumar, LJP Ram Vilas Chief Chirag Paswan and other NDA leaders will also address election rallies in support of party candidates. Leaders of the Grand Alliance from RJD, Congress and left parties will also hit the campaigning trail today. RJD leader Tejaswi Prasad Yadav and Vikashil Insan Party chief Mukesh Sahni will hold public meetings in Baksar, Nalanda, Ara and Pataliputra constituencies in support of RJD and CPIML candidates.
फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया ने कल अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए कान फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनकर इतिहास रच दिया। इस फिल्म ने फेस्टिवल का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। किसी भारतीय महिला निर्देशक की यह पहली फिल्म है जो 30 वर्षों में किसी मुख्य प्रतियोगिता में प्रदर्शित की गई है।
Kapadia's film competed alongside works by world-renowned directors such as Francis Ford Coppola, Sean Baker, Yorgos Lanthimos, Paul Schrader, Magnus von Horn, and Paolo Sorrentino. The jury was presided over by Greta Gerwig, director of Lady Bird and Barbie. 3 years ago, Payal Kapadia won the Le Prix du Documentaire for Best Documentary for A Night of Knowing Nothing at Cannes. All We Imagine as Light is a first feature film, and All We Imagine as Light, an Indo-French production, tells the story of a nurse named Prabha who receives an unexpected gift from her estranged husband, causing disruption in her life. Other Indian films that have previously been selected for the Cannes competition section include works by Chetan Anand, Vishantaram, Raj Kapoor, Satyajit Ray, M.S. Sathyu and Mrinal Sen. Nichanagar remains the only Indian film to have won a Palm d'Or.
वहीं गुजरात में राजकोट के टीआरपी गेम जोन में कल शाम लगी भीषण आग में अब तक 26 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। शनिवार को छुट्टी के कारण यहां बच्चे अपने अभिभावकों के साथ आए थे। आग इतनी जबरदस्त थी कि 5 किलोमीटर दूर से ही धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। टीआरपी गेम जोन गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का सबसे बड़ा गेम जोन बताया जा रहा है। इस बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को राज्य के सभी गेम जोन का निरीक्षण करने और अग्नि सुरक्षा अनुमति के बिना चल रहे गेम जोन को बंद कराने के निर्देश दिए हैं।
The Indian Meteorological Department IMD has said that cyclonic storm Rimal over North Bay of Bengal is now lays about 290 kilometers south southeast of Sagar Islands in West Bengal, 300 kilometers south southwest of Kepupura in Bangladesh and 320 kilometers south southeast of Canning in West Bengal. IMD said it will intensify into a severe cyclonic storm in the next 6 hours and cross between Bangladesh and adjoining West Bengal coast around today midnight as severe cyclonic storm.
जी अनिता, और मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि चक्रवात रेमल कोलकाता शहर सहित पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा, आइए सुनते हैं।
बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन स्टॉर्म रिमाल कल केंद्रीभूत हुआ था, वो धीरे धीरे उत्तर की दिशा में गति कर रहा है और आज मिडनाइट तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट को सागर आइलैंड और थेपोपारा के बीच में हिट करेगा। जब हिट करेगा ये एक सीजर साइक्लोन स्टॉर्म के हिसाब से हिट करेगा, जिसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर आवर, गस्टिंग 235 किलोमीटर आवर होने का संभावना है। ये ज्यादातर विंड साउथ और नॉर्थ 24 परगना जिले में होने का संभावना है। इसके प्रभाव में ऑलरेडी कोस्टल वेस्ट बंगाल में बारिश शुरू हो चुका है, कोलकाता में भी बारिश हो रहा है। बारिश का तीव्रता धीरे धीरे बढ़ेगा और नून से हेवी रेनफॉल शुरू होने का संभावना है। और जो विंड्स है, इस विंड्स में पेड़ गिर सकता है, पेड़ का ब्रांचेस गिर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टैंडिंग क्रॉप्स वगैरह भी अफेक्टेड होगा और जो स्मॉल हॉटमेंट्स है, हेटेड हाउसेस है, इसमें लार्ज स्केल डैमेज होने का संभावना है और डैमेज ईस्ट मेदिनीपुर से शुरू करके साउथ कंट्रोल प्रोग्राम नॉर्थ कंट्रोल प्रोग्राम होगा। और बारिश का प्रभाव साउथ एंड नॉर्थ कंट्रोल प्रोग्राम हावड़ा, हुगली, कलकत्ता, नदिया और यहाँ ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। इसलिए हम कंटिन्यूसली वार्निंग हर 3 घंटे और ये जारी रहेगा। आज का जो लैंडफॉल है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा इवनिंग से और मिडनाइट तक लैंडफॉल प्रोसेस चलेगा।
और अब आगे बढ़ते हैं। कार्ड से भुगतान के लिए भारत की रुपए सेवा मालदीव में जल्द ही शुरू होगी। इससे मालदीव की मुद्रा रूफिया को मजबूती मिलने की संभावना है। मालदीव की मीडिया में आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद के हवाले से कहा गया है कि रुपए सेवा शुरू करने का उद्देश्य अमरीकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और क्षेत्रीय भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाना है। श्री सईद ने इस सिलसिले में 2 सप्ताह पहले भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर से मुलाकात की थी।
Israel has agreed to renew talks with Hamas on a hostage deal next week with the mediation of Egypt, Qatar and the US, Israel's state-owned TV reported today. According to the report at a meeting in Paris yesterday, David Barnier, the chief of Israeli Mossad intelligence agency, presented a new proposal approved by Israeli War Cabinet to William Burns, director of the US Central Intelligence Agency, and the Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Yasim Al Thani. An Israeli government official confirmed that Barnier had returned to Israel today morning following his meeting with William Burns and Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Yasim Al Thani in Paris. Israel's state-owned TV reported that Burns had offered potential solutions to the contentious issues that had stalled previous negotiations, adding that the upcoming talks will be led by Egypt and Qatar with active involvement from the US. the previous round of ceasefire negotiations in the Gaza Strip, which took place in Egypt, collapsed earlier this month.
केदारनाथ में इस बार दर्शन के लिए रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बार 10 मई से 24 मई तक 4,47,000 यात्री केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन ने यात्रियों के लिए पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था भी की है। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के कपाट कल सुबह विधि विधान से ग्रीष्मकाल के लिए खुल गए। इसी के साथ इस वर्ष की हेमकुंड यात्रा भी शुरू हो गई है।
In archery, the Indian women's compound team of Aditi Swami, Jyoti Surekha Vennam and Parneel Kaur won the gold medal at the Archery World Cup 2024 Stage 2 in Yecheon, Republic of Korea yesterday. The Indian women's compound and archery team got the better of Turkey's Hazal Barun, Ais Behra Suzer and Begum Yuva in the gold medal match with a scoreline of 232-226. Today, three-time Olympian Deepika Kumari will compete in the women's individual recurve semi-finals against South Korea's Lim Chiyoon. The first batch of Indian cricketers, including skipper Rohit Sharma, departed for United States yesterday ahead of the T20 World Cup beginning on June 2. Apart from Rohit-based spearhead Jasprit Bumrah, top-ranked T20-01 batter Surya Kumar Yadav, head coach Rahul Dravid and batting coach Vikram Rathore and a few other players left from Mumbai airport. Other players in the travelling contingent include Ravindra Jadeja, Shivam Dubey, Mohammad Siraj, Arshdeep Singh, Khalil Ahmed, Kuldeep Yadav and Akshar Patel among others. The G20 World Cup will be jointly hosted by the USA and the West Indies from June 2 to June 29. The Indian cricket team will begin its campaign against Ireland on June 5 at the newly constructed Nassau County International Cricket Stadium in New York. India will face Pakistan on June 9, followed by matches against co-host USA, June 12, Canada, June 15 in the Group A matches. India had won the inaugural edition way back in 2007 in South Africa.
वहीं आईपीएल क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।
लोक निर्णय 2024, अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन द जनरल इलेक्शंस, एवरी इवनिंग एट 7
एंड रिपीट ब्रॉडकास्ट एट 9:30 PM ऑन आकाशवाणी गोल्ड।
अपडेट्स ऑफ इलेक्शन एक्टिविटीज, insights from regions and constituencies, expert opinion and analysis
in the world's largest festival of democracy.
Stay tuned to Lok Prasarak ke saath Lok Nirnay 2024.
तो श्रोता अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और आप आइए रुख कर लेते हैं महानगरों का। तो अनीता, क्या है आपके पास सबसे पहले चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में?
In the Metro Rail's Phase 2, 20 kilometers of network has been completed in different parts of the city and the suburbs that will link at least 25 localities 3.5 years after the construction. A 10.77 kilometer tunnel and a 10 kilometer elevated section of both upline and downline parts of the corridors have been made feasible. The 116.1 kilometer Phase 2 with 118 stations has three corridors that includes a 42.6 kilometer underground section linked by 45 stations. Construction of around 47 stations is also underway. At some stations, the entry-exit work is underway, and in some other stations, construction of substructure or superstructure is in progress. The School Education Department has announced that state board schools will reopen for classes 1 to 9 on June 6th after summer vacation. The Director of School Education, G. Arivoli, said that chief educational officers should take all steps to reopen schools on the specified date. The upcoming academic year will be an important year for school students as the state government is likely to implement state education policy drafted by a committee headed by Justice D. Murugesan. U.S. Ambassador to India, Eric Gassetti, announced that he is working towards establishing a U.S. consulate in Bengaluru in the upcoming year. The decision to set up a consulate in Bengaluru, a long-pending demand, was taken during Prime Minister Narendra Modi's state visit to the U.S. in 2023. A joint statement by the U.S. and India, issued on June 22, 2023, reads, "Concomitant with the rapid growth in our strategic partnership and demand for travel, both sides intend to open new consulates in each other's countries." Gassetti made these remarks at the U.S.-India Space Cooperation Conference organized jointly by U.S. Commercial Services, USCS, and U.S. India Business Council, USIBC. Liquor sales in Bengaluru will be prohibited from June 1 to June 6 due to the Legislative Council elections and the accounting for the Lok Sabha elections. During this period, all wine shops, bars and pubs will be closed. However, pubs and bars will be allowed to serve non-alcoholic beverages and food to their customers. According to the order, strict action will be taken against any violations. The MLC elections polling is scheduled for June 3 with the vote counting set for June 6. Simultaneously, Lok Sabha elections 2024 vote counting will take place on June 4. The CPI and Telangana Jan Samiti have extended support to the Congress in the MLC by-election of graduates constituency of Nalgonda, Warangal, Khammam. Chief Minister Yerravanth Reddy has convened a meeting with these three parties and discussed with them about the election. The constituency covers the area seen as strongholds of these left parties and covers one-third area of the state, means 34 assembly constituencies spread in 12 districts. Following the meeting, the three parties extended their support to the Congress candidate, Sri Naveen, for the by-poll. Meanwhile, the election authorities have made all arrangements for tomorrow's polling. About 4,60,000 graduate voters are going to utilize their franchise through preferential voting by marking on ballot paper. While a total of 52 candidates are in fray, the main fight is between the Congress candidate, Naveen alias Teenmar Mallana, BJP candidate G. Parminder Reddy and A. Rakesh Reddy of BRS.
और श्रोताओं, अब रुख कर लेते हैं दिल्ली से जुड़ी खबरों का। डीडी भारती पर अब प्रत्येक रविवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। यह अनूठी पहल एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां एक सरकारी संस्थान अपने कार्यों को पेशेवर तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करेगा। इस साप्ताहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित किया जाएगा। कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉ सच्चिदानंद जोशी ने बताया कि भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता अद्वितीय है और ये साप्ताहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे जीवित रखने और जनता तक पहुंचाने के लिए शुरू किया जा रहा है। कला केंद्र देश के नए संसद भवन की संपूर्ण कलाकृति सहित अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहा है। पिछले 35 वर्षों में इस केंद्र ने देश की कला परिदृश्य में अग्रणी भूमिका निभाई है। ये केंद्र संस्कृति मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान है। वहीं नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस राजधानी में से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। ये प्रतियोगिता 15 जून तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। वहीं प्रतिभागियों को अपनी पेंटिंग दिल्ली में दरियागंज स्थित अपराध नियंत्रण शाखा के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पते पर भेजना होगा। पेंटिंग ईमेल से भी भेजी जा सकती है। पता है ncord2022@gmail.com। ईमेल एक बार फिर से सुन लें, ncord2022@gmail.com पर आप भेज सकते हैं और इसमें भागीदारी ले सकते हैं। और अब मुंबई की ओर रुख कर लेते हैं। मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली झीलों में जलस्तर 10% से नीचे गिरने के कारण बृहन्मुंबई नगर निगम ने एहतियात के तौर पर पानी में कटौती की घोषणा की है। नगर निकाय के अनुसार 30 मई से पूरे शहर में पानी की आपूर्ति में 5% की कटौती की जाएगी और 5 जून से पानी की कटौती को बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा। यात्रा के अनुभव को बढ़ाने और यात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए एक और सक्रिय उपाय में मध्य रेलवे ने मुंबई डिवीजन से उपनगरीय ट्रेनों में एसी और प्रथम श्रेणी कोचों में अनियमित यात्रा के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक समर्पित एसी टास्क फोर्स की शुरुआत की है, जिसमें आप व्हाट्सएप के जरिए शिकायत भेज सकते हैं। इसका नंबर है 7208819987 पर आप जो है अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अब रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में मतदान शांतिपूर्वक समाप्त हो गया, लेकिन हिंसा और अशांति कुछ घटनाएं सामने आई हैं। तामल्लुक, घाटल, मेदिनीपुर, कांती में मतदान करते वक्त काफी दिक्कत हुई। पुरुलिया, बांकुड़ा और बिष्णुपुर, झाड़ग्राम में शांतिपूर्ण मतदान दर्ज किया गया। वहीं एक बड़ी घटना में झाड़ग्राम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गरबेटा में भाजपा उम्मीदवार पर ईंटों से हमला किया गया, एक सुरक्षाकर्मी भी वहां घायल हो गया। इस मामले को लेकर 2 केस भी दर्ज किए गए हैं और 318 निवारक गिरफ्तारियां भी की गई। पश्चिम बंगाल में काफी हद तक मतदान शांतिपूर्ण रहा। 79.34% मतदान वहां पर दर्ज किया गया। मतगणना 4 जून को होगी। और श्रोताओं, अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो दिल्ली में तो आज आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में बारिश हो सकती है, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में बादल छाये रहेंगे, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो ये तो थे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। तो अनीता, क्या है आपके शहर में मौसम का हाल?
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 29 डिग्रीज एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 38 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स, द मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्रीज सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 32 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी of development of thunder lightning. The temperature will hover between a minimum of 28 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius. And now, time now to actually turn the pages of history forward. And in the year 1906, Benjamin Peary Pal, internationally famous scientist of Indian agriculture, was born at Mukundpur, Punjab. In 1929, he went to Cambridge to do a research on wheat, and he returned to Burma with a PhD 5 years later. In 1965, Pal became the Director General of the newly founded Indian Council of Agricultural Research in New Delhi. He's written several books on roses, the most popular being The Rose in India.
1950 की बात करें तो ब्रिटेन में पेट्रोल खरीदने पर लगी सीमा को आज ही के दिन समाप्त किया गया था। वहीं 1969 में अपोलो 10 के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे।
In 1957, जनता इंश्योरेंस स्कीम वॉज इनॉग्रेटेड इन बॉम्बे। इन 1993, द सेंटर डिसाइड्स टू इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस to provide 27% reservation for the socially and educationally backward classes in the central services from 15th of June. In the year 1997, the government decides to allow use of environment-friendly LPG as a motor vehicle fuel. And in 1998, S. Chandrasekhar, scientist, was selected for the Niels Bohr UNESCO Gold Medal. In the year 1999, IRS P4 OceanSat with the Ocean Color Monitor OCM and a multi-frequency scanning microwave radiometer MSMR and two small satellites KITSAT of Korea and TubeSat of Germany launched by PSLV C2.
और अनीता, 1999 में इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के तीन उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। सन 2002 की बात करें तो चीन का विमान समुद्र में गिरने से 225 लोगों की मृत्यु आज ही के दिन हुई थी। सन 2007 में भारत जर्मनी के बीच रक्षा समझौता संपन्न हुआ। तो ये तो थे इतिहास की बात। और इससे पहले कि हम कुछ मशहूर हस्तियों को याद करें, एक हम खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो बेहद गंभीर है। कल दिल्ली के विवेक विहार जो है क्षेत्र में आग लगने से 6 नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई है और इसमें 12 नवजात बच्चे जो हैं वो का जलकर जो है जल गए हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। फिलहाल इन्हें GICU में भर्ती कराया गया है और आगे की जानकारी जो है वो अभी हम इंतजार कर रहे हैं। जी, और
सेगमेंट,
हाँ बिल्कुल, हम आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और याद कर लेते हैं कुछ मशहूर हस्तियों को। तो सबसे पहले क्या है आपके पास अनीता?
जी, ऑन दिस डे वाज बोर्न जॉन वेन, प्रोफेशनली एक्चुअली बोर्न एज मैरियन रॉबर्ट मॉरिसन बट नोन एज जॉन वेन एंड निकनेम्ड द ड्यूक, द अमेरिकन एक्टर हु बिकेम पॉपुलर आइकॉन थ्रू हिज स्टारिंग रोल्स इन फिल्म्स विच वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग हॉलीवुड्स गोल्डन एज, स्पेशली द वेस्टर्न एंड वॉर मूवीज। His career flourished from the silent era of the 1920s through the American New Wave as he appeared in a total of 179 film and television productions. He was among the top box office draws for 3 decades and appeared with many other important Hollywood stars of his era. In the year 1999, the American Film Institute selected Wayne as one of the greatest male stars of classical American cinema.
और अब हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज को। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में उनकी गणना होती है। संभल परिवार, मिलकौल, महात्मा बुद्ध, मिथुन, सुजात व रविन्द्रनाथ टैगोर का आवक्ष आदि उनके प्रमुख मूर्तिशिल्प हैं। अपने दृढ़ संकल्प से वे भारतीय कला के प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों में से एक बने। भारतीय कला में उनके अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया। वर्ष 1925 में रामकिंकर बैज ने शांति निकेतन स्थित कला विद्यालय यानी कला भवन में अपना प्रवेश सुनिश्चित किया और इसके साथ ही नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में अनेक बारीकियां सीखी।
टुडे इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ माइल्स ड्यूई डेविस III, बॉर्न ऑन दिस डे 1926, वॉज द अमेरिकन जैज ट्रम्पेटर, बैंड लीडर एंड कम्पोजर। He's among the most influential and acclaimed figures in the history of jazz and the 20th century music. Davis adopted a variety of musical directions in a roughly five-decade career that kept him at the forefront of many major stylistic developments in jazz. In the early 1950s, Davis recorded some of the earliest hard bop music while on Prestige Records, but did so haphazardly due to a heroin addiction. After a widely acclaimed comeback performance at the Newport Jazz Festival, he signed a long-term contract with Columbia Records and recorded the album Roundabout Midnight in 1955. After a five-year retirement due to poor health, David resumed his career in 1980s, employing the younger musicians and pop sounds. Albums such as The Man with the Horn in 1981 and Tutu in 1986. Rolling Stone described him as the most revered jazz trumpeter of all time, not to mention one of the most important musicians of the 20th century. We have a snippet of one of his performances.
और श्रोता, आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय दक्षिण सिनेमा की सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेत्री और गायिका मनोरमा का। इन्होंने 1500 से अधिक तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। मनोरमा ने फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का खूब प्यार पाया और थांगावेल्लू, थेंगाई, श्रीनिवासन, छो और नागे सही छह दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। 1000 फिल्में पूरी होने के साथ उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया और वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
And today is the birthday of Stephanie Lynn Nix, the American singer-songwriter known for her work with the band Fleetwood Mac. And as a solo artist, after starting her career as a duo with her then-boyfriend Lindsay Buckingham, releasing the album Buckingham Nix to little success, Nix joined Fleetwood Mac in 1975, helping the band to become one of the best-selling music acts of all time, with over 120 million records sold worldwide. Rumors the band's second album with Nix became one of the best-selling albums worldwide, being certified 20 times platinum in the U.S., In 1981, while remaining a member of the Fleetwood Mac, Nix began her solo career, releasing the studio album Belladonna, which topped the Billboard 200 and reached a multi-platinum status. I'm playing a song, Dreams, by Stevie Nicks.
और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी चंपक रमन पिल्लई को। हालांकि उनका जन्म भारत में हुआ था, पर इन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर भाग जर्मनी में बिताया। उनका नाम उन महान क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर देश की आजादी के लिए प्राण गंवा दिए। वे एक ऐसे वीर थे जिन्होंने विदेश में रहते हुए भारत की आजादी की लड़ाई को जारी रखा और एक विदेशी ताकत के साथ मिलकर भारत में अंग्रेजी हुकूमत का सफाया करने की कोशिश की।
And today is also the birthday of Leonard Albert Kravitz, or Lenny Kravitz, the American singer-songwriter, multi-instrumentalist and actor. Kravitz released his debut album Let Love Rule in 1989. This marked the beginning of a career characterized by a blend of rock, funk, reggae, hard rock, soul and R&B. He's had singles including It Ain't Over Till It's Over, Again, each of which reached the top 10, and Let Love Rule. That's what I'm playing for all of you. It's time to take a stand.
Brothers and sisters, join me. We gotta sing Let Love Rule. तो इसके साथ ही श्रोताओं, वक्त चला है आपसे हमेशा की तरह अनुमति लेने का। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।